निराश न हो। अभी तुम्हारे जीवन में अपने लक्ष्य के लिए नित नव आशा का संचार होता रहे, उत्साह बढ़ता रहे, तो बड़ी विक्रमता पूर्वक प्रत्येक भाई और बहन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सहज भाव से हमारे और आपके मन में ये बात आती है, भाई हम क्या करें। इस संबंध में विचार करने से यही विदित होता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें से कौन से ऐसे काम कर रहे हैं जिन न करें, अर्थात न करने वाले कार्यों के न करने से करने वाली बातें स्वयं होने लगती हैं। इससे सिद्ध हुआ कि भाई हमें क्या करना चाहिए ये प्रश्न नहीं है, क्या नहीं करना चाहिए ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न पर जब हम विचार करते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि भाई किसी के प्रति कोई ऐसी बात नहीं करना चाहिए जिससे उसका अहित हो। अहित का अर्थ क्या है? जब मानव स्वाधीनता से पराधीनता की ओर, चेतना से जड़ता की ओर अग्रसर होता है तब वो करने लगता है जो उसे नहीं करना चाहिए। तो अहित का अर्थ यही है कि भाई हम पराधीनता की ओर जड़ता की ओर ना बढ़ें, अपितु पराधीनता से स्वाधीनता की ओर जड़ता से चेतना की ओर अग्रसर हों। उसके लिए एकमात्र सत्संग ही अचूक उपाय है। सत्संग के बिना कोई भी भाई या बहन अपने पर अपना शासन नहीं कर सकता, अपने पर अपना नेतृत्व नहीं कर सकता और अपना स्वयं गुरु नहीं हो सकता। जब तक हम और आप अपने पर अपना शासन नहीं करेंगे, अपने को आप नहीं समझाएंगे, अपने गुरु आप नहीं बनेंगे, तब तक विकास न होगा। कारण क्या है? हिरास का मूल किसी पर से शासित होना। शासित होने का अर्थ क्या है भाई? हम किसी के अधीन हो जाएं, अर्थात वस्तुओं का हमारे ऊपर शासन हो जाए। जब वस्तुओं का शासन हो जाता है तब हम व्यक्तियों की सेवा नहीं कर सकते, और जब व्यक्तियों की सेवा नहीं कर सकते तब पराधीनता से रहित नहीं हो सकते। व्यक्तियों की सेवा का अर्थ क्या है? केवल इतना है कि हम किसी भी भाई को किसी भी बहन को बुरा न समझें, किसी का बुरा न चाहें और किसी के साथ बुराई न करें। अब आप कहेंगे कि हम किसी को बुरा क्यों न समझें? आप गंभीरता से विचार करें, प्रत्येक व्यक्ति साधक है, तो किसी भी साधक को किसी अन्य के प्रति न्याय करने का अधिकार नहीं। समाज विज्ञान की दृष्टि से न्याय राष्ट्र के हाथ में है और भौतिक विज्ञान की दृष्टि से न्याय प्रकृति के हाथ में है और आध्यात्म दृष्टि से न्याय अपने अधीन है और आर्थिक दृष्टि से न्याय प्रभु के अधीन है। किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के साथ न्याय करने का अधिकार नहीं है। आप विचार करें, कोई आपके चोरी करें और आप कहें अच्छा हम तुमको अपनी मर्जी से जेल में रखे लेते हैं अपने घर पर, तो आप रख सकेंगे? क्या राय आप? नहीं रख सकेंगे। तो ये जो न्याय तत्व जो है ये जीवन का बड़ा ही आवश्यक अंग है, परंतु है अपने लिए और अपने द्वारा। जब हम अपने लिए अपने द्वारा न्याय करने लगते हैं तब हमारे जीवन में स्वतः निर्दोषता की अभिव्यक्ति होती है। आप गंभीरता से विचार करें, न्याय होने के पश्चात भी हम दोषी हैं, ये बात समझ में नहीं आती, सही नहीं मालूम होती। क्योंकि न्याय के द्वारा तो हमें निर्दोषता मिलनी चाहिए ना, किंतु वो न्याय जब किसी और के अधीन होने लगता है तब क्या होता है कि यदि अपराध से अधिक दंड मिल गया तो क्रोध उत्पन्न होता है जो कर्तव्य की विस्मृति करने में हेतु है, और यदि अपराध से कम दंड मिला तो लोभ उत्पन्न होता है जो पुनः बुराई में प्रवृत्त कर देता है। इससे इस सिद्ध हुआ कि किसी अन्य के द्वारा किसी पर ठीक ठीक न्याय नहीं मिल सकता। अब प्रश्न ये होता है कि भाई अपने द्वारा कब न्याय होगा, कि अपने द्वारा हम तभी न्याय कर सकते हैं जब ये प्रश्न हमारे सामने सदैव बना रहे कि हमें वर्तमान निर्दोषता को सुरक्षित रखना है, अर्थात दोष रहित होना है। और दोष रहित होने के लिए पहला प्रयास क्या होगा, अपने दोष को जानना। यह एक गंभीर बात है और वो ये है कि दोष को जानना तो विकास का मूल है, किंतु अपने को दोषी मानना ये हिरास का मूल है। दोष जाना जाता है भूतकाल का और दोषी माना जाता है वर्तमान में। तो जब हम अपने को वर्तमान में दोषी मानेंगे तब पुनः दोष की उत्पत्ति होगी। क्यों? कर्ता ही वो कर्म कर्ता का ही चित्र है। ये जो कर्म देखने में आता है जीवन में वो क्या है, वो कर्ता का रूपांतर है। यदि हम अपने को दोषी मानेंगे तो हमारे जीवन में दोष की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए दोष को जाने, और दोष को वही जान सकता है कि जब दोष से असंग हो जाए। आप विचार करके देखें, किसी चीज को जानने के लिए उससे असंग होना पड़ता है। जब उससे असंग होते हैं तब वो दोष अपने में नहीं रहता। इसलिए अपने दोष को जानना ये अपने प्रति न्याय हुआ, और पुनः दोष की उत्पत्ति न हो जाए उसके लिए दोष जनित विथा हो, दोषी दोष की विथा हो। तो दोष जनित जो विथा है वो दोष जनित सुख लोलुपता को नाश कर देती है। जब जीवन में दोष जनित सुख लोलुपता नहीं रहती तब दोष की उत्पत्ति कभी नहीं होती। इससे ये सिद्ध हुआ कि प्रत्येक भाई और बहन स्वयं अपने प्रति न्याय करने लग जाए तो निर्दोष हो सकते हैं, अथवा यूं कहो कि प्राप्त निर्दोषता को सुरक्षित रख सकते हैं। तो प्राप्त निर्दोषता के सुरक्षित रखते ही निर्दोषता जो है वो योग की, बोध की और प्रेम की प्रतीक है। दोष रहित जीवन ही राग रहित जीवन होता है, और राग रहित जीवन में ही योग की अभिव्यक्ति होती है। कुछ लोगों ने ये समझा है कि योग का अर्थ क्या है, शरीर धर्म। शरीर धर्म योग का अर्थ नहीं है, चाहे आसन हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे प्रतिहार हो, चाहे धारणा हो, चाहे ध्यान हो, चाहे समाधि हो। विचार करना, गंभीरता से विचार करना, ये सभी शरीर धर्म है। तो शरीर धर्म का नाम योग नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि योग के सहयोगी साधन है। तो योग का असली अर्थ क्या है, योग का असली अर्थ है राग रहित होने पर जिस जीवन की अभिव्यक्ति होती है, अथवा यूं कहो कि जिस जीवन से एकता होती है उसका नाम योग है। और वो योग सहज है, स्वाभाविक है, स्वतः है। आप कहेंगे योग तो करना पड़ता है, नहीं भाई जरा सोचो तो सही, योग की परिभाषा हमने आपने क्या सुनी है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। अब चित्त की वृत्तियों का जो निरोध है, क्या किसी श्रम से साध्य है? क्या राय आप? नहीं है। तो श्रम रहित हुए बिना वृत्तियों का निरोध हो सकता है? कदाचित नहीं हो सकता। और राग रहित हुए बिना कोई श्रम रहित हो सकता है? नहीं हो सकता। अब राग रहित होने का उपाय क्या होगा? बहुत ही सीधा सरल उपाय, वो ये है कि हमारे जीवन में जो विद्यमान राग है, जो मौजूद राग है, उसकी निवृत्ति कर्तव्य पालन से होगी। और कर्तव्य का सबसे सुंदर रूप क्या है? हम किसी के अधिकारों का अपहरण न करें, ये कर्तव्य का मूल मंत्र है। अब आप कहेंगे कि हम पर किसी का अधिकार क्या है, हम किसी के अधिकार को कैसे जाने? कि भाई जरा सोचो, इतना अधिकार तो प्राणी मात्र का हम पर है कि हम किसी के लिए अहित कर न हो। इसके अतिरिक्त जो बल आपको मिला है, जो सामर्थ्य आपको मिली है, जो योग्यता आपको मिली है, जो वस्तु आपको मिली है, उसका सदुपयोग करें। तो बल का सदुपयोग अगर आप विचार करेंगे तो केवल इतना ही निकलेगा कि किसी निर्बल के काम आ जाए। योग्यता का सदुपयोग अगर आप विचार करेंगे तो यही मालूम होगा कि किसी अयोग्य के काम आ जाए। वस्तुओं का सदुपयोग यही निकलेगा कि जिसके पास वो वस्तु नहीं है वो उसके काम आ जाए। तो मिले हुए के सदुपयोग का अर्थ क्या है? कि अपने पास जो कुछ है वो दूसरों का है, अपना नहीं है। तो फिर अपना क्या है? कि भाई अपने को तो योग चाहिए ना। आप विचार करें, जब अपने को योग चाहिए तो योग किसी वस्तु के अधीन होता तब तो भाई जो संपन्न व्यक्ति अपने को मानते हैं, जिनके पास बहुत सा सामान है, उनको योग मिलना चाहिए। पर ऐसा देखने में तो नहीं आता। तो योग किसी वस्तु के अधीन नहीं है, और योग किसी अन्य व्यक्ति के अधीन होता तो जिनके बहुत से साथी हैं वो उनको योग प्रदान कर देते। तो न योग वस्तु के अधीन है, न योग व्यक्ति के अधीन है, और योग किसी परिस्थिति के अधीन होता तो भाई वो योग किसी एक व्यक्ति को ही प्राप्त हो सकता था, क्योंकि दो व्यक्ति की समान परिस्थिति होती नहीं। इससे ये सिद्ध हो, न किसी वस्तु के अधीन है, न किसी व्यक्ति के अधीन है, न किसी परिस्थिति के अधीन है। योग अधीन है राग रहित होने के। अब राग रहित होने के लिए आपको सबसे पहले करना ही क्या होगा, अथवा कर ही क्या सकते हैं? दो ही बात कर सकते हैं कि अगर पति होकर पत्नी में राग है तो पत्नी के अधिकार की रक्षा कर दो और उस पर से अपना अधिकार हटा लो। पिता होकर अगर पुत्र में राग है तो पुत्र के अधिकार की रक्षा कर दो और उस पर से अपना अधिकार हटा लो। मित्र होकर अगर मित्र में राग है तो मित्र के अधिकार की रक्षा करते हुए अपना अधिकार हटा लो। व्यक्ति होकर यदि समाज का राग है तो समाज के अधिकार की रक्षा करते हुए अपना अधिकार हटा लो। शरीर बनकर अगर सृष्टि का राग है तो सृष्टि के अधिकार की रक्षा करते हुए अपने अधिकार को हटा लो। अपने को जीव मानकर ईश्वर के अधिकार की रक्षा कर दो और अपना अधिकार हटा लो। आप कहेंगे कि हमने तो सभी के अधिकार की रक्षा की और हमने अपने अधिकार को हटा लिया तो फिर हमारा निर्वाह कैसे होगा? तो मेरे भाई, अधिकार लालसा से किसी का निर्वाह नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि अगर आपके अधिकार की पूर्ति होगी और आप अधिकार चाहेंगे और जिस समय उसकी पूर्ति होगी तब नवीन राग की उत्पत्ति हो जाएगी, और अगर अपूर्ति होगी तो क्रोध की उत्पत्ति हो जाएगी। तो अधिकार लालसा से राग और क्रोध के ही दो प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि जिन महापुरुषों ने अपने अधिकार का त्याग कर दिया है उनके अधिकार सुरक्षित नहीं रहे हैं, ऐसा इसका नियम नहीं है। उनके अधिकार तो सुरक्षित रहते ही हैं, किंतु उनमें उस अधिकार के सुरक्षित होने से रखते कि भाई हमारे सभी अधिकार सुरक्षित हो ही जाएंगे, ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि हमारा अधिकार सुरक्षित न रहे, और ऐसी भी आ सकती है कि सुरक्षित हो जाए। तो अगर हमारे जीवन में अधिकार लालसा नहीं है तो बलपूर्वक अपने अधिकार को प्राप्त कर लेंगे, तो नहीं कर सकते। बलपूर्वक प्राप्त किया हुआ अधिकार परस्पर में संघर्ष को जन्म देता है, और संघर्ष विनाश का मूल होता है। मैं एक हिंदू की कई भी बात कहता हूँ, उसने मुझसे ये कहा कि सन 47 के उपद्रव में ऐसी घटना उसने देखी कि एक बालिका थी, मुसलमान की लड़की थी, और उससे लोग ये कहते थे कि तुम हिंदू हो जाओ। तो आप सच मानिए, मैं हिंदू कई बात कहता हूं कि उसको हर तरह से तंग किया गया, यहां तक उसको मार ही जाना, किंतु जब तक उसके मुंह से आवाज निकली, जब तक उसमें बल रहा, तब तक पाकिस्तान जिंदाबाद कहती रही। मैं आपसे पूछता हूं, यही ना आपके बल का उपयोग है? ऐसी अनेक घटनाएं हिंदुओं के साथ हुई होंगी। कहने का मेरा तात्पर्य है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्ग, कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र बलपूर्वक एक व्यक्ति से भी वो नहीं करा सकता जो उसे नहीं करा सकता। इससे सिद्ध होता है कि भाई हम अधिकार प्राप्ति में सर्वदा पराधीन हैं, किंतु दूसरों के अधिकार देने में सर्वदा स्वाधीन है। यदि हम अपने जीवन में ये महाव्रत अपनाएं कि भाई हम दूसरों के अधिकार की रक्षा करेंगे ही और अपने अधिकार की बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे, तो दूसरों के अधिकार की रक्षा करने से जो विद्यमान राग था, जो जन्म जन्मांतर का राग था, वो नाश हो जाएगा, और अपने अधिकार के त्याग से नवीन राग उत्पन्न नहीं होगा। अर्थात हम और आप अपने दैनिक कर्म के द्वारा, अपने नित्य कर्म के द्वारा बड़ी ही सुगमता पूर्वक राग रहित हो सकते हैं। अब रही बात ये कि हम जो अपना नित्य कर्म करें वो किस भाव से करें। ये भाव जो होता है ना, ये दर्शन के अधीन होता है। जैसी जिसकी दार्शनिक दृष्टि होती है वैसा उसका भाव होता है। कल्पना करो कि किसी की दृष्टि यह है कि वो भौतिकवादी है, अर्थात जिसने संसार की सत्ता स्वीकार की है, वो प्रत्येक कर्तव्य कर्म विश्व के नाते करेगा। क्यों? हम उसी की सत्ता स्वीकार कर सकते हैं जिससे हमारी स्वरूप की एकता हो, जाति एकता हो, चाहे गुणों की भिन्नता भले ही हो, तो गुणों की भिन्नता होने पर, योग्यता की भिन्नता होने पर, सामर्थ्य की भिन्नता होने पर, जिससे स्वरूप की एकता होती है, उसी की सत्ता स्वीकार की जाती है, और वही उसका दर्शन है, वही उसकी फिलॉसफी है। तो भौतिक विज्ञान की दृष्टि से हम प्रत्येक वर्तमान कर्तव्य कर्म विश्व के नाते करें। अर्थात जैसे एक सती साध्वी नारी अपने पति के नाते पति के सभी कुटुंबी जनों की यथोचित सेवा करती है, उसका परिणाम क्या होता है कि अंत में वो पति प्रेम को पाकर कृत कृत होती है। उसी प्रकार हम जिसके नाते अपना वर्तमान कर्तव्य कर्म करेंगे, कर्म के अंत में हमें उसी का प्रेम प्राप्त होगा। तो इस दृष्टि से यह सिद्ध हुआ कि भौतिकवादी को विश्व प्रेम प्राप्त होगा, अध्यात्मवादी को आत्मरति प्राप्त होगी, और ईश्वरवादी को प्रभु प्रेम प्राप्त होगा। तो प्राप्त होगा प्रेम, कोई और चीज प्राप्त नहीं होगी। और क्या होगा कि कर्तव्य का पालन करने से जब हम राग रहित हो जाएंगे तो राग रहित होने से योग प्राप्त होगा। और क्या होगा कि राग रहित होने से स्वाधीनता प्राप्त होगी। तो तीन चीजें प्राप्त हुई, योग प्राप्त हुआ, बोध प्राप्त हुआ, और प्रेम प्राप्त हुआ। क्योंकि राग ही भोग की भूमि है। जब राग नहीं रहा तो भोग नहीं रहेगा, भोग नहीं रहेगा तब योग आ जाएगा, और राग ही अबोध का चिन्ह है, जब राग नहीं रहा तो बोध स्वतः होगा, और राग ही प्रेम में बाधक है, आसक्ति ही प्रेम में बाधक है। जब आसक्ति नहीं रहेगी तो स्वतः प्रेम जागृत होगा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि प्रत्येक भाई को, प्रत्येक बहन को, प्रत्येक परिस्थिति में योग प्राप्त हो सकता है। करते हैं हम बोध की चर्चा करते हैं, हम प्रेम की चर्चा करते हैं, उसको प्राप्त नहीं करते। तो क्यों नहीं प्राप्त करते कि हमारे जीवन में अधिकार लालसा ने इतना घर कर लिया है, इतना घर कर लिया है कि हर एक भाई सोचेगा कि मैं चाहे जैसा हूं पर मेरी धर्म पत्नी तो सती सावित्री के समान हो, और हर एक पत्नी सोचेगी कि मैं चाहे जैसी हूं पर मेरा पति तो राम के समान हो, मैं चाहे जैसा हूं मेरा पुत्र तो राम के समान हो। कहने का मेरा तात्पर्य भाई और कुछ नहीं है, ये मांग कोई गलत हो ऐसी बात नहीं है, पर आप अपनी इस मांग में स्वाधीन हैं क्या? हाँ, एक बात है कि आप राम जैसे पति हो सकते हैं, आप राम जैसे पुत्र हो सकते हैं, आप दशरथ जैसे पिता हो सकते हैं। तो आप एक बड़े ही सुहृदय सदमित्र हो सकते हैं, एक अच्छे पड़ोसी हो सकते हैं, एक अच्छे नागरिक हो सकते हैं, एक समाज के एक अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं। यानी आप तो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ कोई अच्छा ही करे इसमें तो आप स्वाधीन नहीं हुए। और अगर इसमें आप स्वाधीन होते तो आपको कोई बुरा साथी मिलता ही क्यों, आपके साथ कोई बुराई करता ही क्यों? किंतु आपका दैनिक जीवन इस बात को बताता है कि आप इस बात में स्वाधीन नहीं है। तो आज हमसे भूल क्या होती है कि जिसकी जिस बात में हम स्वाधीन हैं उसको तो करेंगे नहीं, और जिस बात में हम पराधीन हैं बोले उसकी आशा रखेंगे। तात्पर्य क्या होता है कि जो करना चाहिए उसके न करने से करने का राग रहेगा ही, करने का राग रहेगा ही, और जब करने का राग रहेगा तो देह का अभिमान गल ही नहीं सकता, और जब देह का अभिमान गल नहीं सकता तो हम काम रहित हो ही नहीं सकते, और जब काम रहित हो ही नहीं सकते तो आप ही बताइए कि देह के सहयोग से, किसी वस्तु के सहयोग से कैसे योग प्राप्त हो जाएगा। किंतु बड़े ही दुख की बात है और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि आज लोगों ने शरीर के व्यायाम को, देखिए प्राणायाम भी एक व्यायाम है, आसन भी एक व्यायाम है, आप विचार करके देखें नेति धोती क्या है, ये भी शरीर का ही एक धर्म है, शरीर की सफाई है। तो हम स्थूल शरीर की सफाई को, स्थूल शरीर के व्यायाम को ही योग मानने बैठे हैं, योग मान बैठे हैं, और जहाँ ये सारी बातें सिखाई जाती है उसका नाम रख दिया जाता है योग आश्रम। वास्तव में है वो देह आश्रम, माफ कीजिएगा बुरा मत मानिए, विचार कीजिए, है वो देह आश्रम। तो क्या आप इसका अर्थ ये समझेंगे कि उन बातों की आवश्यकता नहीं है? नहीं भाई, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यकता है। तो जो शरीर विज्ञान है उसको आप योग विज्ञान कहकर योग का अपमान करते हैं, योग की बेइज्जती करते हैं और अपने को योग से विमुख रखते हैं। राग रहित होने में निर्बल से निर्बल प्राणी भी समर्थ है, लेकिन और जितनी आज योग के नाम पर बातें बताई जाती हैं उनमें हर व्यक्ति समर्थ नहीं है, कोई समर्थ है कोई असमर्थ है। इसका अर्थ आप ये न लगा लें कि मैं उन उपायों का खंडन